नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित तीन पोतों दुनागिरी, संशोधक और अग्रे को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की इस यात्रा को इन नए पोतों से और गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत की प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। इस परियोजना का उद्देश्य देश में विलुप्त हो रही वन्य जीवों की प्रजाति को फिर से बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति ने उद्यान के चीता प्रबंधन क्षेत्र का दौरा किया। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का इलाज जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लगभग 32 यात्रियों वाली उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और घायलों के तीव्र स्वस्थ होने की कामना की है। UGC नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT के माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगोलिया में श्री जयशंकर विदेश मंत्री बी बत्सिसिग के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 24 और 25 जून को वे दक्षिण कोरिया की यात्रा करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता करेंगे। डॉ जयशंकर दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में मुख्य भाषण भी देंगे। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका तथा ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा करने के लिए जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।